एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं एरिक रीज की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब द लीन स्टार्टअप के बारे में।
हाँ, द लीन स्टार्टअप, ये नाम तो बहुत सुना है।
बिल्कुल, ये वो किताब है जिसने सही में स्टार्टअप्स और नए बिजनेस आइडियाज को देखने का नजरिया ही बदल दिया है।
और मुझे लगता है आज के टाइम में ये शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी होगी, है ना?
हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहाँ इतनी तेजी से सब बदल रहा है, कुछ पक्का नहीं है, तो इसके सिद्धांत बहुत काम के हैं।
मतलब सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए नहीं?
नहीं नहीं, चाहे कोई अपना नया काम शुरू कर रहा हो या किसी बड़ी कंपनी में कुछ नया करने की कोशिश हो या कोई एनजीओ हो।
अच्छा।
हर कोई इसी सवाल से तो जूझ रहा है कि भाई कुछ ऐसा कैसे बनाए जिसकी वाकई जरूरत हो, वो भी बिना टाइम और पैसा बर्बाद किए।
हाँ, ये बर्बादी वाली बात,
ये किताब इसी से बचाते है।
बिल्कुल, ये उसी सबसे बड़ी बर्बादी से बचने का रास्ता दिखाती है।
मतलब आप महीनों सालों तक कुछ बनाते रहें और बाद में पता चले अरे इसे तो कोई चाहता ही नहीं था।
उफ, वो तो बहुत बुरा लगता होगा।
हाँ, तो इसका मूल मंत्र है पुरानी लंबी चौड़ी प्लानिंग छोड़ो और एक साइंटिस्ट की तरह एक्सपेरिमेंट करना सीखो।
हाँ,
जल्दी बनाओ, नापो के क्या हो रहा है और उससे सीख कर आगे बढ़ो।
अच्छा, ये बिल्ड मेजर लर्न वाली बात।
हाँ, वही मशहूर बिल्ड मेजर लर्न का चक्कर।
तो ये एरिक रीज हैं कौन, मतलब जिन्होंने इतने पुराने तरीकों को चैलेंज किया, क्या खास बात है इनमें?
देखिए, एरिक रीज सिलिकॉन वैली के एक जाने माने उद्यमी हैं, ब्लॉगर हैं, लेखक हैं, पर सबसे अहम बात पता है क्या है?
क्या?
कि इनकी बातें सिर्फ किताबी नहीं है, थियरी नहीं है, इन्होंने खुद कंपनियां बनाई हैं, फेलियर देखा है, सक्सेस भी देखी है।
अच्छा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मतलब?
हाँ जी, वो IMVU नाम की एक कंपनी थी, 3D अवतार वाली सोशल नेटवर्किंग साइट, उसके को फाउंडर और CTO थे।
IMVU, हाँ सुना है।
तो वहीं पर उसी कंपनी में उन्हें और उनकी टीम को ये कड़वा सबक मिला।
क्या हुआ था?
हुआ ये कि उन्होंने महीनों लगाकर कई फीचर्स बनाए बहुत मेहनत से, और फिर पता चला कि ग्राहकों ने इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं।
अरे यार।
हाँ, तब उन्हें समझ आया कि ये जो पुराना तरीका है ना प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, कि पहले सब कुछ परफेक्ट बना लो फिर लॉन्च करो।
हाँ हाँ वॉटरफॉल मॉडल जैसा कुछ।
हाँ, कुछ वैसा ही, वो नए वेंचर्स के लिए काम नहीं करता, खासकर तब जब आपको पता ही नहीं कि ग्राहक को चाहिए क्या। तो उन्हें जिंदा रहने के लिए, मतलब कंपनी चलाने के लिए, एक बिल्कुल अलग तरीका अपनाना पड़ा, लगातार सीखने और बदलने वाला।
तो मतलब इंजीनियरिंग की समझ और साथ में वो जमीनी अनुभव, दोनों का कॉम्बिनेशन है।
बिल्कुल ठीक समझे, उन्होंने देखा कि टोयोटा की लीन मैन्युफैक्चरिंग है जो बर्बादी कम करने पर जोर देती है।
हाँ, लीन मैन्युफैक्चरिंग।
और एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है जो तेज बदलावों की बात करता है। स्टीव ब्लैंक का कस्टमर डेवलपमेंट है।
कस्टमर डेवलपमेंट,
हाँ, जो ग्राहक को समझने पर फोकस करता है। तो उन्होंने इन सब के अच्छे पॉइंट्स को मिलाया और स्टार्टअप्स की इस अनिश्चित दुनिया के लिए एक नया सिस्टम बना दिया।
वाह।
और किताब लिखने से भी पहले उन्होंने अपने ब्लॉग स्टार्टअप लेसन्स लर्न्ड पर ये आइडियाज शेयर करना शुरू कर दिए थे।
अच्छा, ब्लॉग से शुरुआत हुई?
हाँ, उससे दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स का एक पूरा ग्रुप बन गया, एक कम्युनिटी, और उनके आइडियाज को और बल मिला। तो वो सिर्फ थ्योरी देने वाले नहीं, बल्कि इस लीन स्टार्टअप मूवमेंट के एक तरह से क्रिएटर और सबसे बड़े सपोर्टर हैं।
तो ये किताब है क्या फिर? क्या ये बस टेक स्टार्टअप्स के लिए है जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं?
नहीं, यही तो इसमें खास बात है। ये किताब असल में एक प्रैक्टिकल गाइड है जो किसी भी तरह के नए वेंचर को शुरू करने और चलाने का एक नया, एक साइंटिफिक तरीका बताती है।
साइंटिफिक?
हाँ, और री स्टार्टअप की परिभाषा भी बहुत बड़ी रखते हैं। वो कहते हैं कोई भी इंसानी संस्था जो बहुत ज्यादा अनिश्चितता के माहौल में एक नया प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के लिए बनी हो।
अरे, तो इसका मतलब ये सिर्फ टेक कंपनियों के लिए नहीं है?
बिल्कुल नहीं, ये बड़ी कंपनियों के अंदर नए इनोवेशन प्रोजेक्ट्स पे भी लागू होती हैं, गैर लाभकारी संस्थाओं पर, यहाँ तक कि सरकारी पहलों पर भी।
यानी जहां भी अनिश्चितता है वहां ये काम आ सकती है?
एग्जैक्टली, जहां आपको पक्का नहीं पता कि आपका आइडिया चलेगा या नहीं, तो वहां सबसे जरूरी चीज क्या है?
एक परफेक्ट प्लान?
नहीं, शायद सीखने की काबिलियत।
बिल्कुल, तेजी से सीखने और जरूरत पड़ने पर रास्ता बदलने की क्षमता।
ये किताब हमें उन पुरानी कहानियों से दूर ले जाती है।
कौन सी कहानियाँ?
वही कि कोई अतेला जीनियस आया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने दुनिया बदल दी।
हाँ हाँ, वो फिल्मी टाइप।
हाँ, उसकी जगह ये एक ज्यादा हकीकत पर आधारित तरीका बताती है, जिसमें उद्यमी एक वैज्ञानिक जैसा है।
वैज्ञानिक जैसा? कैसे?
वो अपनी धारणाओं को, अपने आइडियाज को सच नहीं मान लेता, उन्हें वो हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना मानता है।
अच्छा।
और फिर छोटे छोटे प्रयोगों से उन्हें टेस्ट करता है, परखता है।
और इन प्रयोगों का कोई ढांचा, कोई फ्रेमवर्क है?
हाँ, वही बिल्ड मेजर लर्न फीडबैक लूप।
ओके।
संक्षेप में, पहला बिल्ड, अपनी परिकल्पना को परखने के लिए जल्दी से प्रोडक्ट का एक न्यूनतम रूप बनाओ, जिसे कहते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, MVP।
MVP, हाँ।
दूसरा मेजर, देखो कि ग्राहक असल में क्या कर रहे हैं, सिर्फ दिखावटी नंबर मत देखो, इसे वो इनोवेशन अकाउंटिंग कहते हैं।
इनोवेशन अकाउंटिंग, इंटरेस्टिंग।
तीसरा लर्न, जो डेटा मिला उससे सीखो और फिर तय करो कि इसी रास्ते पर चलना है, यानी परसिवियर करना है, या दिशा बदलनी है, यानी पिवट करना है।
पिवट।
हाँ, और किताब में ज़ैपोस, ड्रॉपबॉक्स जैसे स्टार्टअप से लेकर जी जैसी बड़ी कंपनी तक के उदाहरण है कि कैसे उन्होंने ये सब किया। मकसद एक ही है, एंटरप्रेन्योरशिप को थोड़ा कम कियोटिक बनाना, थोड़ा कम अस्त व्यस्त और बर्बादी कम करना।
चलिए अब इस बिल्ड मेजर लर्न फीडबैक लूप को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सुनने में तो यह सीधा लगता है, बनाओ, नापो, सीखो, पर बिल्ड में MVP का क्या मतलब है असल में?
हाँ, MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। अब यहाँ मिनिमम का मतलब अधूरा या घटिया नहीं है, प्लीज ये गलत फहमी मत रखिएगा।
अच्छा, तो क्या है?
इसका मतलब है आपके प्रोडक्ट या सर्विस का वो सबसे सरल रूप, सबसे सिंपल वर्जन, जिसे बनाने में कम से कम मेहनत और टाइम लगे।
ठीक है।
लेकिन जिससे आप अपनी सबसे बुनियादी धारणाओं के बारे में, अपने अजम्पशंस के बारे में ग्राहकों से कुछ ठोस सीख सकें। याद रखिए, MVP का पहला मकसद बेचना नहीं है।
तो क्या है?
सीखना है, लर्निंग।
कोई उदाहरण है जिससे ये और क्लियर हो जाए?
हाँ, ज़ैपोस वाला उदाहरण तो क्लासिक माना जाता है।
ज़ैपोस, जूते वाली ऑनलाइन कंपनी।
हाँ वही। उसके फाउंडर निक स्विनमन ये जानना चाहते थे कि क्या लोग ऑनलाइन जूते खरीदेंगे। उस जमाने में ये बड़ा सवाल था।
हाँ, तब तो मुश्किल लगता होगा।
बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया, कोई बहुत बड़ी वेबसाइट या इन्वेंटरी सिस्टम नहीं बनाया।
तो फिर
वो बस पास की जूते की दुकानों में गए, जूतों की तस्वीरें खींची, उन्हें एक सिंपल से वेबसाइट पे डाल दिया।
अच्छा।
और जब कोई ऑर्डर आया तो वो खुद दुकान गए, वो जूता खरीदा और ग्राहक को भेज दिया।
अरे वाह, मतलब बिना स्टॉक रखे।
हाँ, बिना भारी निवेश के उन्हें ये पक्का पता चल गया कि हाँ, लोग ऑनलाइन जूते खरीदेंगे। ये था उनका MVP।
कमाल है। मतलब प्रोडक्ट पूरा बनाने से पहले ही ये पता कर लेना कि लोग इस्तेमाल करेंगे या नहीं।
बिल्कुल। ड्रॉपबॉक्स का उदाहरण भी ऐसा ही है।
ड्रॉपबॉक्स, फाइल शेयरिंग वाला।
हाँ, उनका प्रोडक्ट बनाने में काफी टाइम और पैसा लगता, तो उन्होंने क्या किया, बस एक छोटा सा वीडियो बनाया जिसमें दिखाया कि उनका फाइल सिंकिंग सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, डेमो वीडियो जैसा।
अच्छा, सिर्फ वीडियो?
हाँ, वो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया और कहा कि जो लोग इसे ट्राई करना चाहते हैं वो साइन अप कर लें।
और फिर
रातों रात हजारों लोगों ने साइन अप कर लिया।
सच में?
हाँ, इससे उन्हें पक्का हो गया कि भाई इस आइडिया में दम है, और फिर उन्होंने प्रोडक्ट बनाने में पैसा लगाया। ये भी एक तरह का MVP था, बिना कोड लिखे ही उन्होंने अपनी सबसे बड़ी परिकल्पना जांच ली।
समझ गया, तो MVP का मतलब है कम से कम कोशिश में ज्यादा से ज्यादा सीखना।
एग्जैक्टली, मिनिमम एफर्ट, मैक्सिमम लर्निंग।
ठीक है, तो हमने कुछ बनाया, बिल्ड। अब आता है मेजर, यानी मापना। इसमें क्या खास है? हम वैसे भी तो सेल्स या वेबसाइट विजिट्स देखते ही है ना।
रीस कहते हैं कि ये जो पारंपरिक मेट्रिक्स है ना, जैसे पेज व्यूज कितने हुए, ऐप कितनी बार डाउनलोड हुआ,
हाँ हाँ, टोटल डाउनलोड्स,
ये अक्सर धोखा दे सकते हैं। सुनने में अच्छे लगते हैं, पर क्या इनसे पता चलता है कि लोग सच में प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उन्हें फायदा हो रहा है?
सही बात है।
इन्हें वो कहते हैं वैनिटी मैट्रिक्स।
वैनिटी मैट्रिक्स मतलब दिखावटी आंकड़े।
हाँ बिल्कुल। इनकी जगह वो इनोवेशन अकाउंटिंग की बात करते हैं।
इनोवेशन अकाउंटिंग, ये क्या है, कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या?
नहीं नहीं, वैसा नहीं। ये एक ज्यादा डिसिप्लिन्ड तरीका है प्रोग्रेस को नापने का।
ओके।
ये फोकस करता है एक्शनेबल मैट्रिक्स पर।
एक्शनेबल मैट्रिक्स,
हाँ, यानी ऐसे आंकड़े जो सीधे सीधे दिखाते हैं कि ग्राहक आपके प्रोडक्ट के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, क्या आपका बिजनेस मॉडल काम कर रहा है,
जैसे कि
कितने परसेंट यूजर्स ने साइन अप के बाद पहला हफ्ता प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, कितने फ्री यूजर्स पेड कस्टमर बन गए, क्या ग्राहक दूसरों को रेफर कर रहे हैं।
अच्छा, मतलब असली एंगेजमेंट।
हाँ, इनोवेशन अकाउंटिंग में आप पहले एक बेसलाइन बनाते हैं, MVP से शुरुआती आंकड़े लेते हैं, फिर प्रोडक्ट में बदलाव करके देखते हैं कि क्या ये मेट्रिक सुधर रहे हैं। इसे वो कहते हैं इंजन को ट्यून करना।
इंजन ट्यून करना, इंटरेस्टिंग एनालॉजी है।
और फिर इन ठोस आंकड़ों के आधार पर आप फैसला लेते हैं।
और यहीं हम लूप के तीसरे हिस्से पर आते हैं, लर्न यानी सीखना और फैसला लेना।
हाँ, जो आंकड़े हमने जमा किए मेजर, उनसे हम सीखते लर्न, क्या ये डेटा हमारी शुरुआती सोच को सही साबित कर रहा है, क्या हम वाकई एक सस्टेनेबल बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर जवाब हाँ है तो हमें इसी रास्ते पर और मेहनत करनी चाहिए। इसे रीस कहते हैं,
पर्सीवेयर
मतलब टिके रहना।
और अगर नहीं,
लेकिन अगर आंकड़े बताते हैं कि हमारी मूल धारणाएं गलत थीं या मार्केट वैसा रिएक्ट नहीं कर रहा जैसा हमने सोचा था, तो हमें रास्ता बदलना होगा।
और इसे ही कहते हैं,
पिविट।
पिविट तो पिविट का मतलब हुआ कि आइडिया फेल हो गया, बिजनेस बंद।
नहीं, बिल्कुल नहीं, यही तो लीन स्टार्टअप का सबसे क्रांतिकारी पहलू है शायद।
अच्छा,
पिविट को फेलियर नहीं माना जाता, बल्कि इसे लर्निंग के आधार पे किया गया एक स्ट्रेटेजिक बदलाव माना जाता है।
स्ट्रेटेजिक बदलाव?
हाँ, रीस इसे डिफाइन करते हैं उत्पाद, बिजनेस मॉडल या ग्रोथ इंजन के बारे में एक नई मौलिक परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए एक संरचित मार्ग सुधार।
बापरे, काफी भारी परिभाषा है।
हाँ, मतलब ये है कि ये घबराहट में लिया गया यूटर्न नहीं है, ये एक सोचा समझा कदम है जो आपकी लर्निंग पर बेस्ड है।
क्या पिविट के भी अलग अलग टाइप होते हैं?
हाँ, कई तरह के हो सकते हैं, जैसे जूम इन पिविट। मान लीजिए आपके प्रोडक्ट का कोई एक छोटा सा फीचर है, वो बहुत पॉपुलर हो गया, तो आप उसी को अपना मेन प्रोडक्ट बना लें।
अच्छा।
या कस्टमर सेगमेंट पिविट, आपको लगे कि प्रोडक्ट तो सही है पर आप गलत ग्राहकों को टारगेट कर रहे थे, तो आप किसी दूसरे कस्टमर ग्रुप पर फोकस करें। या प्लेटफॉर्म पिविट, आप एक ऐप से एक प्लेटफॉर्म बन जाएं जिस पर दूसरे भी कुछ बना सकें, या इसका उल्टा भी हो सकता है।
ओके।
इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये फैसले अंदाजे पर नहीं बल्कि ग्राहकों के असली व्यवहार पर आधारित होते हैं, जिसे वो कहते हैं वैलिडेटेड लर्निंग।
वैलिडेटेड लर्निंग मतलब सबूतों के आधार पर सीखना।
बिल्कुल।
तो अगर हम इस पूरी सोच के सार को, मतलब जो मुख्य बातें हैं, उनमें समेटें, तो सबसे पहली बात क्या होगी?
मेरे ख्याल से सबसे बुनियादी बात है प्रोग्रेस का असली पैमाना सीखना है, सिर्फ बनाना नहीं। मतलब वैलिडेटेड लर्निंग ही सब कुछ है। आपने कितने फीचर्स बनाए, कितनी मेहनत की, वो उतना मायने नहीं रखता जब तक आप ये नहीं सीख रहे हैं कि ग्राहक असल में क्या चाहते हैं और क्या आपका बिजनेस मॉडल चलेगा। स्टार्टअप का काम सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं है बल्कि ये सीखना है कि एक टिकाऊ बिजनेस कैसे बनाया जाए।
हाँ, ये तो पूरी सोच ही बदल देता है, मतलब फोकस आउटपुट से हटकर लर्निंग पर आ गया।
बिल्कुल। दूसरी अहम बात शायद यही बिल्ड मेजर लर्न फीडबैक लूप है। ये कोई एक बार करने वाली चीज नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाला चक्कर है।
हाँ, एक साइकिल।
और आपका लक्ष्य होना चाहिए कि इस पूरे चक्कर को आप कितनी तेजी से पूरा कर सकते हैं। स्पीड, जितनी तेजी से आप सीखेंगे उतनी ही तेजी से सही रास्ते पर आएंगे या गलत रास्ते से हटेंगे।
तीसरा जाहिर है MVP का सिद्धांत, परफेक्शन के पीछे मत भागो, जल्दी से कुछ ऐसा बनाओ जिससे सीखा जा सके।
हाँ, ये परफेक्शनिज्म के जाल से बचाता है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपने पहले प्रोडक्ट को बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश में ही फंसे रह जाते हैं। MVP आपको सीधे ग्राहकों के सामने ले जाता है, कम बर्बादी, ज्यादा सीख।
चौथा, आपने बताया इनोवेशन अकाउंटिंग का अनुशासन, मतलब सिर्फ उन मेट्रिक्स पर ध्यान देना जो वाकई मायने रखते हैं।
ये आपको अंदाजों से हटाकर सबूतों की ओर ले जाता है और आपको खुद के प्रति ईमानदार रखता है, वरना अपनी ही बनाई चीज से प्यार हो जाना बहुत आसान है, भले वो काम ना कर रही हो।
हाँ, ये होता है। पांचवा, पिविट को फेलियर ना समझना।
बिल्कुल। ये मानना कि शुरुआती आइडियाज अक्सर गलत होते हैं और सीख के आधार पर दिशा बदलना एक नॉर्मल और जरूरी प्रोसेस है। इसे एक स्ट्रेटेजिक हथियार की तरह देखना। हम भारत में भी देखते हैं ना कैसे सफल स्टार्टअप्स वक्त के साथ अपने मॉडल या ऑफरिंग में बदलाव लाते रहे हैं।
हाँ, बिल्कुल।
बाजार से सीखते हुए।
और शायद आखिरी ये समझना कि उद्यमिता भी एक तरह का मैनेजमेंट ही है, बस ये खास तौर पर अनिश्चितता के लिए बना है। ये कोई जादू नहीं है बल्कि एक प्रोसेस है जिसे सीखा जा सकता है, सुधारा जा सकता है।
और इन सब का मकसद वही है, बर्बादी को कम करना।
एग्जैक्टली, वेस्ट रिडक्शन।
किताब में कुछ कोट्स या ऐसी लाइनें भी होंगी जो दिमाग में बैठ जाती हैं, कुछ खास बातें।
हाँ बिल्कुल है। जैसे एक है, जीतने का एकमात्र तरीका है दूसरों से तेजी से सीखना।
मतलब कंपटीशन लर्निंग स्पीड का है।
हाँ, अनिश्चित माहौल में आपकी असली ताकत आपकी सीखने की रफ्तार है।
और एमवीपी की वो परिभाषा भी काफी सटीक लगी मुझे।
कौन सी वाली?
उत्पाद का वो संस्करण जो एक टीम को कम से कम प्रयास के साथ ग्राहकों के बारे में अधिकतम मात्रा में मान्य सीख इकट्ठा करने की अनुमति देता है। मतलब साफ है, मकसद सीखना है और कोशिश बर्बादी से बचने की।
बिल्कुल। और पिवट की परिभाषा भी देखिए, एक संरचित मार्ग सुधार, एक नई मौलिक परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए। ये बताता है कि पिवट कोई रैंडम चेंज नहीं है बल्कि एक सोचा समझा एक्सपेरिमेंट है।
हाँ, और वो बात भी बहुत जरूरी लगी कि हमें ये सीखना चाहिए कि ग्राहक वास्तव में क्या चाहते हैं, न कि वे क्या कहते हैं कि वे चाहते हैं या हमें क्या लगता है कि उन्हें चाहना चाहिए।
हाँ, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब सिर्फ बातों पर मत जाओ, लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं।
तो उनके असली व्यवहार पर ध्यान दो।
हाँ, और वो असली व्यवहार आपको एमवीपी और प्रयोगों से ही पता चलता है। इसी को वैलिडेटेड लर्निंग कहते हैं।
तो इन सब बातों का आइडियाज का असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल हो सकता है? नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो ये साफ है।
हाँ, उनके लिए तो ये जैसे एक गाइड बुक ही है। अपनी सबसे रिस्की धारणाएं पहचानो, उन्हें टेस्ट करने के लिए जल्दी से एमवीपी बनाओ, असली ग्राहक व्यवहार नापो और फिर डेटा के बेस पर तय करो टिके रहना है या पिविट करना है।
इससे शुरू में ही बहुत सारा पैसा और टाइम बच सकता है।
बिल्कुल। और ये सिर्फ नए स्टार्टअप्स के लिए नहीं है, बड़ी कंपनियों में जो लोग काम करते हैं वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
बड़ी कंपनियों में कैसे?
मान लीजिए कोई नया फीचर लाना है तो उसे बड़े पैमाने पर लॉन्च करने से पहले छोटे ग्रुप पर एमवीपी की तरह टेस्ट कर लो।
हाँ।
किसी नए प्रोजेक्ट के लिए बजट चाहिए तो इनोवेशन अकाउंटिंग का इस्तेमाल करके दिखाओ कि आप वाकई कुछ सीख रहे हैं, ना कि सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं।
सही है, मतलब सबूत पेश करो।
हाँ, छोटी फुर्तीली टीमें बनाकर तेजी से प्रयोग किए जा सकते हैं। जीई का फास्ट वर्क्स प्रोग्राम इसी का एक बड़ा उदाहरण है।
अच्छा, और गैर लाभकारी संस्थाएं, मतलब एनजीओ वगैरह,
वो भी सोच सकती हैं। उनके जो प्रोग्राम्स हैं क्या वो वाकई असरदार हैं? क्या वो छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स चलाकर देख सकते हैं कि कौन सा तरीका ज्यादा काम कर रहा है,
मतलब एमवीपी की तरह?
हाँ, और क्या वो सिर्फ ये गिनने की बजाय कि कितने लोगों तक पहुंचे, ये नाप सकते हैं कि असल में कितना बदलाव आया? मतलब वैलिडेटेड लर्निंग। इससे जो डोनेशन का पैसा है उसका सही इस्तेमाल हो सकेगा।
ये तो बहुत जरूरी है, यहाँ तक कि हम अपनी पर्सनल लाइफ और करियर में भी इसे यूज कर सकते हैं।
क्यों नहीं? मान लीजिए कोई नया करियर ट्राई करना है तो पूरी तरह जॉब छोड़ने से पहले क्यों ना एक छोटा सा साइड प्रोजेक्ट या पार्ट टाइम कोर्स करके देखें, एक तरह का एमवीपी।
हाँ, ये तो अच्छा आइडिया।
देखें कि क्या आपको मजा आ रहा है, क्या आप उसमें अच्छे हैं, मतलब मेजर करें और फिर इस सीख के आधार पर फैसला करें कि आगे बढ़ना है या कुछ और ट्राई करना है। मतलब लर्न करें।
ये तो बड़े फैसलों में रिस्क कम करने का एक तरीका हो गया, जैसे लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना।
बिल्कुल।
तो इस पूरी बातचीत से मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि ये सोच को बदल देती है। क्या हम इसे बना सकते हैं से हटकर सोच हो जाती है क्या हमें इसे बनाना चाहिए।
हाँ।
और फिर हमें ये कैसे सीखना चाहिए कि क्या बनाना है, ये भरोसे की जगह सबूतों पर आधारित प्रक्रिया है।
बिल्कुल। और मेरे लिए ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग था कि कैसे फैक्ट्री फ्लोर के सिद्धांत, मतलब बर्बादी कम करना, छोटे बैच में काम करना, लगातार सुधार, वो इनोवेशन की इस अनिश्चित दुनिया पर इतने सटीक बैठते हैं।
हाँ, ये कनेक्शन कमाल का है।
इसने इनोवेशन के लिए जैसे कॉमन भाषा और टूलकिट दे दिया है। ये इनोवेशन को सिर्फ एक कला या किस्मत का खेल नहीं मानता बल्कि एक अनुशासन, एक साइंस की तरह देखने में मदद करता है।
हाँ, इसने वाकई एक पूरी पीढ़ी के उद्यमियों और इनोवेटर्स के काम करने का तरीका बदल दिया है।
ये इनोवेशन को ज्यादा सुलभ बनाता है जिसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है। पर यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है।
क्या?
कि ये जो लीन तरीका है, छोटे कदम, लगातार प्रयोग, ये सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है, पर क्या जो बड़े क्रांतिकारी आइडियाज होते हैं, जो दुनिया बदलने वाले विजन होते हैं, क्या उन्हें भी हमेशा ऐसी छोटे छोटे कदमों वाले रास्ते से ही गुजरना चाहिए?
या कभी कभी एक मजबूत विजन के साथ एक बड़ा दाव खेलना भी जरूरी होता है?
ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। शायद इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है, इस पर सोचा जा सकता है।
बिल्कुल, मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।